તારીખ 18/1/1994 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 493 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું દેવલાલીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 32
પત્રાંક 493 છ પદ કા પુત્ર લિખા હૈ આગે નમસ્કાર વચન સત્પુરુષ કે પ્રતિ બહુમાન કે વચન લિખે હુએ હૈ જો છ પદ સે સિદ્ધ હૈ એસા આત્મસ્વરૂપ આત્મસ્વરૂપ કૈસા હૈ એ છ પદો સે જો સિદ્ધ હૈ એસા આત્મસ્વરૂપ ये जिसके वचन से अंगीकार करने से सहज में प्रकट होता है ऐसा आत्मस्वरूप जिसके वचन को अंगीकार करने से सहज मात्र में प्रकट होता है और जो आत्मस्वरूप प्रकट होने से सर्वकाल जीव संपूर्ण आनंद को प्राप्त हो जाता है कोई दुविधा कोई संकट कोई विटमना कोई दुख नहीं रहता है निर्भय हो जाता है संपूर्ण आनंद को प्राप्त हो जाता है निर्भय हो जाता है ऐसे वचन के कहने वाले सत्पुरुष के गुण की व्याख्या करने का मेरे में शक्ति नहीं है मैं अशक्त हूँ ऐसा सत्पुरुष के गुण की व्याख्या करने के लिए मैं अशक्त हूँ क्यों कि ये उसमें जो गुण है करुणा आदि भाव है ये अनंत है उसकी व्याख्या करने में मैं अशक्त हूँ क्यों अशक्त हूँ वो लिखते हैं क्योंकि जिसका प्रत्युपकार न हो सके ऐसा परमात्म भाव यह भी कुछ भी प्रकार की वांछा बिना मात्र निष्कारण करुणाशीलता से दिया है परमात्म भाव का दान दिया है सत्पुरुष ने क्या किया है कि परमात्म भाव का दान दिया है दान देने वाले कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं जो दान देकर अधिकार की भावना होती है वो तो दान ही नहीं है कि हमने दान दिया है इसलिए हमारा इतना अधिकार होना चाहिए ये तो दान ही नहीं है ये तो बार्गेनिंग है और कुछ
नहीं है
नहीं है सौदाबाजी है मतलब जबकि सत्पुरुष के गुण की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि इसकी गुण की व्याख्या मैं नहीं कर सकता हूँ इसलिए नहीं कर सकता हूँ कि इनकी करुणा ही कोई ऐसी है अपार करुणा है अनंत करुणा है और परमात्म भाव जैसे परम भाव का जिसने कुछ भी अपेक्षा किए बिना दान दिया है सर्वोत्कृष्ट पदार्थ का दान दिया और वो भी कुछ भी वांछा अपेक्षा रखे बिना दिया इसकी इसकी महिमा इसका प्रत्युपकार हम कैसे कैसे बात में शब्द में कैसे आ सके वो बात फिर से इस वचन के कहनहारे से सत्पुरुष के गुण की व्याख्या करने में मेरी अशक्ति है क्योंकि जिसका प्रत्युपकार न हो सके ऐसा परमात्म भाव जो उपकार दिया किया है उसका प्रत्युपकार करने के लिए कोई परिस्थिति नहीं रहती है ऐसा परमात्म भाव जिसने कुछ भी चाहे बिना मात्र निष्कारण करुणाशीलता से दिया और ऐसा होने पर भी जिसने अन्य जीव के बारे में, दूसरे जीव के विषय में, यह मेरा शिष्य है अथवा मेरी भक्ति को करने वाला है इसलिए मेरा है, ऐसा कभी देखा नहीं। थोड़ी बात बात बैठे बैठे चर्चा में हुई थी कि इस मार्ग में, सन्मार्ग में जो नए आते हैं उसको अधिक आदर देते हैं, पुराने तो भक्ति करते हैं, तो ये भक्ति करते हैं इसलिए मेरे शिष्य हैं, ये मेरे हैं, ऐसी दृष्टि सत्पुरुष की नहीं होती, उसको तो वो गौण करते हैं, और जो नए आते हैं उसको ऊपर उठाते हैं, उसको आदर देते हैं। ऐसी जिसकी नीति रीति होती है उसको सत्पुरुष कहने में आना है, वरना तो पक्षपात हो ही जाए। जैसे दो लड़का तकरार करता है तो अपने वाले का दोस्त नहीं देखेगा, सामने वाले का देखेगा। ये संसार मार्ग है, मोक्ष मार्ग में ऐसा नहीं है। अपने वाले का पक्ष करना ये ऐसा संसार मार्ग, यहाँ ये सन्मार्ग में नहीं होता।
हम लोग तो ऐसा समझ लेते हैं कि उस पर कृपा ज्यादा है, हम लोग तो ऐसा समझ लेते हैं कि उस पर कृपा ज्यादा है।
ठीक है, उनकी तो सत्पुरुष की करुणा को करुणा के क्या बात करें, वो तो शब्द में ही नहीं, खुद ही शब्द में नहीं ला सकते हैं, ऐसी बात है। देखो ऐसे ऐसा परमात्म भाव निष्कारण करुणाशीलता से दिया, और ऐसा दान देते हुए भी शिष्य के प्रति ऐसा नहीं किया कि ये मेरा भक्ति करने वाला है इसलिए मेरा है, ये मेरा शिष्य है, ऐसा कभी देखा नहीं, ऐसी नजर नहीं है। इसके नजर में ऐसा नहीं आता कि मेरा शिष्य मेरी भक्ति करता है, बहुत मेरे अनुकूल रहता है, दूसरे मेरे अनुकूल नहीं रहते हैं, ऐसा वो देखते नहीं है। ऐसा कभी देखा नहीं, ऐसे जो सत्पुरुष उसको अत्यंत भक्ति है, भक्ति से बार बार नमस्कार हो, नमस्कार करते जाते हैं, आगे लिखते जाते हैं, जिस सत्पुरुषों ने सद्गुरु की भक्ति निरूपण की है। अब सत्पुरुषों ने क्या किया है कि सद्गुरु की भक्ति का प्रतिपादन अच्छी तरह किया है, यह भक्ति मात्र शिष्य के कल्याण के अर्थ कही है, कोई दूसरा हेतु इसमें नहीं है। भक्ति करने वाले का कल्याण हो जाए, भक्ति करने वाले को राग हो जाए ऐसा नहीं वो लिखा है, भक्ति करने वाले का कल्याण हो जाए, उसका दर्शन हो, इसका मोह जो है वो नाश हो जाएगा आगे जा करके। जो सत्पुरुषों ने सद्गुरु की भक्ति निरूपण की है, यह भक्ति मात्र शिष्य के कल्याणार्थ की कही है, जो भक्ति को प्राप्त होने से, ऐसी भक्ति प्राप्त होने से सद्गुरु के आत्मा की चेष्टा के विषय वृत्ति रहती है। क्या होता है, भक्तिमान को एक नजर मिलती है, ऐसा कहते हैं, क्या क्या रहस्य खुला है तो नमस्कार वचन, लेकिन क्या क्या बात भीतर में रख दी है कि ऐसी भक्ति प्राप्त होने से सद्गुरु के आत्मा की चेष्टा विषयक वृत्ति रहती है। ये क्या बात है, सद्गुरु के शरीर की चेष्टा नहीं लिया, सदगुरु के विकल्प की चेष्टा नहीं लिया, सदगुरु की वाणी की चेष्टा भी नहीं लिया। यहाँ पर सदगुरु के आत्मा की चेष्टा विषय बदलते रहते हैं। इनका आत्मा है वो सम्यक पुरुषार्थ में कैसे सहज रूप से गतिमान करता है, अपना सम्यक पुरुषार्थ में कैसा परिणमन हो रहा है, ये पुरुषार्थ को देखते हैं। क्योंकि मोक्ष मार्ग पुरुषार्थ प्रधान है, मोक्ष मार्ग पुरुषार्थ प्रधान होने से मोक्ष मार्ग में विराजमान ऐसे सत्पुरुष की आत्मा की चेष्टा निरंतर हमेशा हमेशा अपने स्वरूप के प्रति लगी रहती है, हर उदय में, हर प्रसंग में, हर बात में।
चेष्टा मैंने क्या, आत्मा की चेष्टा है, सत्पुरुष की आत्मा की चेष्टा है।
चेष्टा में आप गुजराती में बहुत शब्द प्रयोग करते, हिंदी में शब्द प्रयोग वधारे छे। चेष्टा संबंधी चेष्टा एटले प्रयास, जो आपने गुजराती में अर्थ करिए तो प्रयास, पुरुषार्थ, प्रयास, खास प्रकार, खास प्रकार नो प्रयास, एने चेष्टा कहेवामां आवे छे।
विशिष्ट हाव भाव, विशिष्ट
हाव भाव भी मिलता है।
आमां एक शब्द आवे छे क्रिया चेष्टित पण।
हाँ, क्रिया चेष्टित पण, चेष्टित होता है। जो भक्ति प्राप्त होने से शिष्य को क्या होता है कि सद्गुरु के आत्मा की जो चेष्टा है उसमें वृत्ति रहती है, उसमें वृत्ति रहती है, ऐसा ही नहीं लिखा, उसमें वृत्ति रहती है, उसका जीव होना रहता है। तो कैसे कैसे आत्मिक पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहे हैं, उसको और बहुमान, और बहुमान आता रहता है, और बहुमान आता रहता है। कभी कभी तो भीड़ में होते हैं सत्पुरुष और उनकी पुरुषार्थ की चेष्टा देखकर उनको और भक्ति बढ़ जाती है, ऐसा ऐसा भी कभी बनता है। लेकिन ऐसा भक्तिमान हो तो, ऐसी उनकी वृत्ति और दृष्टि हो तो, वरना तो उल्टा पड़ जावे, गड़बड़ हो जावे, थोड़ा डेंजर पॉइंट है। योग्यता हो तो बहुत लाभ हो जावे, अयोग्यता हो तो बहुत नुकसान हो जावे, उनको अभक्ति हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है सत्पुरुष से, फिर भी ऐसा क्यों होता है, ऐसा उनको हो जाएगी। वृत्ति तो एक साथ, परिणमन में तो एक साथ दो साइड है, एक अंश बाहर भी है, एक अंश अंदर भी है। जो अंदर के आत्मवृत्ति को, आत्मचेष्टा को देखता है उसको बहु माना जाएगा, जिसकी अंतर्दृष्टि नहीं है, बाह्य दृष्टि है, उनको ये लगेगा कि ये बात कैसे, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ, उनको अभक्ति हो जाएगी, उसको जो थोड़ा बहुमान था वो भी छूट जाएगा। ऐसा प्रसंग है थोड़ा
આચરણ
માં શું છે કે બાહ્ય વૃત્તિ નું નિમિત્ત છે, બાહ્યાચરણ મેં બાહ્ય વૃત્તિ કા નિમિત્ત હૈ, और जो अंतर आचरण है वो भी आचरण है, उनको अनाचरण नहीं है, अंतर्वृत्ति वो भी एक स्वरूप आचरण है।
तो
उनको देखे तो उनको लग जाए कि हो मेरु को उठाना इतना कठिन नहीं है, उतना वो उठा रहे हैं, मेरु को कोई नहीं उठा सकते, वो तो मेरु से भी अधिक वजनदार को भी उठाते हैं, ऐसा लगे, ऐसी बात है। જે શૈલી છે કૃપાળુ દેવ ની, એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી શૈલી છે। ગુજરાતી સાહિત્યમાં કોઈ આવા લેખક જોવામાં નથી આવતા, છેલ્લા સવાસો વર્ષ થયા, સો વર્ષ થઈ ગયા, આ સો એક સેંકડામાં કોઈ એવો સાહિત્યકાર, કોઈ એવો સાક્ષર, કોઈ એવો વિદ્વાન ગુજરાતી ભાષામાં.
તો પછી થોડી ગુજરાતી જ વાત વાપરો ને, ગુજરાતી નોથલ માલ આપો ને, ગુજરાત બધું બેસે.
એક એક શબ્દો તુલન કોની સાથે કરવું,
સરખામણી
નજરે નથી પડતો કોઈ કવિવિદ કે કોઈ લેખનકાર.
મને મળેલા છે, ભાવનગર બી આવી ગયા છે સત્સંગ અર્થે, રાજકોટ હું બે વખત ગયો, ત્યાં બી ઉતરતો ત્યાં ચર્ચા કરવા રાત્રે આવે, એટલો બધો ચર્ચાનો રસ. આપને થાક લાગે તો કહી દેજો, બાકી મને તો સવાર પડશે તો ખબર નહીં પડે.
શું નામ ભાઈનું?
ઘનશ્યામભાઈ માધોતિયા. પટેલ છે, વૈષ્ણવ છે, કૃપાળુદેવના વચનોના તીર એવા ભાગ્યા છે કે એની જિંદગી બદલાઈ ગઈ છે. તો એ પોતે ગુજરાતીના પ્રોફેસર છે, ડોક્ટરેટ થયેલા છે ગુજરાતી ભાષામાં, પીએચડી કરેલું છે, અને રાજકોટની કોલેજમાં પ્રોફેસર છે. ઘનશ્યામભાઈ પટેલ છે, નાની ઉંમરના છે, 45 વર્ષ આસપાસના છે. પછી કઈ ગુજરાતી ભાષામાં રવિન્દ્રનાથ ટાગોરની કૃતિને વખાણ કરતા હતા, ચર્ચા કરતા હોય ને કઈ ભાષા, એનું ભાષા જ્ઞાન ઘણું છે, એટલે જેની પાસે જે જ્ઞાન હોય થોડી ઘણી વાતો એવી આવે. ચર્ચા દરમિયાન એમ કહેતા રવિન્દ્રનાથ ટાગોરનું સાહિત્ય છે ગુજરાતી ભાષામાં, એવું કોઈ સાહિત્ય નથી જોવા મળતું, એવો કોઈ લેખક નથી જોવા મળતો. એટલે મેં પૂછ્યું કે રવિન્દ્રનાથ ટાગોરનું એટલું બધું તમને સારું લાગ્યું તો કમ્પેરેટિવલી કૃપાળુદેવનું લખાણ કેમ લાગ્યું, આટલો એક પ્રશ્ન કર્યો. કૃપાળુદેવ પાસે તો રવિન્દ્રનાથ કાંઈ નથી, કાંઈ નથી કે એટલી અમને એમને કે શબ્દ સંયોજન, વાક્ય સંયોજન અને મેથડ ઓફ પ્લેસિંગ જેને કહેવાય, પ્રેઝન્ટેશનની જે મેથડ છે એ અજોડ વસ્તુ છે. એ તો એમને કોઈ એમને ઇન્ટેલિજન્સી સુપર નેચરલ હતી, નેચરલ નહીં સુપર નેચરલ હતી, એટલે એમનું જે ભાષાનો યોગ પણ એવો લાગ્યો, બહુ સમર્થ હતું. અને છતાં એમ કહે છે કે સત્પુરુષની વાત લખવા, એમના ગુણની પ્રશંસા કરવા, એમના ગુણની વ્યાખ્યા કરવા, સત્પુરુષની વ્યાખ્યા કરવા મારી અશક્તિ છે, એટલી શક્તિ મારામાં નથી એમ કહે છે. એ વાત લખે શું કહે છે, જો ભક્તિ કો પ્રાપ્ત હોને છે, જે ભક્તિને પ્રાપ્ત થવાથી સદગુરુના આત્માની ચેષ્ટાને વિશે વૃત્તિ રહે, આ ગુજરાતી છે. જો ભક્તિ પ્રાપ્ત હોને છે, સદગુરુ કે આત્મા કી ચેષ્ટા કે ચેષ્ટા મેં વૃત્તિ રહે, અપૂર્વ ગુણ દ્રષ્ટિ ગોચર હોકર અન્ય સ્વચ્છંદ મટે. સત્પુરુષના ગુણ, અપૂર્વ ગુણ દ્રષ્ટિ ગોચર હો જાય ઓર અપના સ્વચ્છંદ મટ જાય. મેં ક્યા ઇસકે આગે મેં ક્યા હું, સત્પુરુષ કો દેખતે હુએ ઉનકો લગતા હૈ કે મેં તો ઇસકે ચરણ કી રજ હું, ઓર કુછ મેરા કોઈ સ્થાન નહીં, સત્પુરુષ કે આગે મેરા કોઈ સ્થાન હૈ નહીં. તો સ્વચ્છંદ સબ મિટ જાતા હૈ, કોઈ સ્વચ્છંદ નહીં રહેતા. અન્ય સ્વચ્છંદ મિટ જાય ઓર સહેજ આત્મબોધ હો જાય, સહેજે આસાની સે સુગમતા સે આત્મબોધ હો જાય, ક્યોંકે યે બોધ કી મૂર્તિ હૈ, જ્ઞાન કી મૂર્તિ હૈ, આ પ્રગટ પ્રત્યક્ષ આત્મજ્ઞાન કી પ્રતિમા હી હૈ. સહેજે આત્મબોધ હો જાય ऐसा जान करके जो भक्ति का निरूपण किया है, यह भक्ति को और यह सत्पुरुष को फिर फिर बार बार त्रिकाल नमस्कार नमस्कार वचन
यहाँ दर्शन मौनी टुकड़ा थे क्या
हो जाए दर्शन हो के क्या ताकत हमारे आगे तो वो कुछ नहीं है। जगत में भी जो डरते हैं ना उसको लोग डराते हैं, जो नहीं डरते हैं उसको डराने को कोई जाएगा भी नहीं, उसके पास पास भी नहीं पहुंचेगा। एडवोकेट था आपके जैसा, हमारा अभी भी कंसल्टेंट हमारा वही है इनकम टैक्स का है। उसका एक इंप्रेशन ही ऐसा, एक बहुत कड़क आदमी है, इतना कड़क नहीं है हमने देख लिया। काम तो चालाकी से निपटाता है लेकिन उसका इंप्रेशन ऐसा है कि बहुत कड़क है। थोड़ी बात शुरू में ऐसे बोल देवे जोर से, मैं तो समझ गया कि वो कितने चालाके कैसे काम करता है चालाकी से। मैंने कहा आपका ये इंप्रेशन है और इंप्रेशन आपने बनाई रखी है, मैं समझ लिया आपको दम नहीं है। वो आपकी कितनी हिम्मत है वो भी मेरे ख्याल में इतना हिम्मत नहीं है मैं जितना समझता हूँ उतने तो, लेकिन दिखाव तो बहुत है। तो इसमें क्या नीति क्या है, क्या अभिप्राय क्या रखा है? ऐसा है भाई साहब, ऐसा रखने से 10 लड़ने वाले में तो 8 तो लड़ने कोई नहीं आता है। हमारे सामने 10 लड़ने वाले केस आते हैं उसमें 8 तो लड़ने को ही नहीं आते हैं। 2 के साथ लड़ना पड़ता है तो कभी चला किसे निपटा लेते हैं, फिर लड़ते भी नहीं तो समझ लेते कि बराबर लड़ने को आए तो हम नहीं लड़ते हैं, हम पीछे हट करके उसको निपटा देते हैं। लेकिन 8 का काम तो ऐसे, 80% काम तो ऐसे ही निकल जाता है। दर्शन वो कर्म के वर्गणा, कर्म का सैन्य, कर्म का कुछ कुछ डरने की जरूरत नहीं है।
पुरुषार्थ वाले को सब
कुछ है ही नहीं ना हमारे सामने। वो महाभारत में आता है कि अर्जुन जब कुरुक्षेत्र में पहुंचा और जब उसने गांडीव धनुष उठाया, उसका धनुष का नाम था गांडीव धनुष, और दूरी खींच करके उसको पणच कहते हैं, धनुष की पणच, दूरी को पणच कहते हैं। पणच खींची और उसमें से जो आवाज निकली वो आवाज सुनते ही कौरों का मन जो सैन्य था वो भागने लगा, लग गया, मर गए। अभी अर्जुन आ गया, धनुष भी उठा लिया, अभी तो बाण में अनुसंधान नहीं किया था, छोड़ा भी नहीं था, लेकिन हाथ में धनुष लेकर के दूरी को खींचा और आवाज निकाला, वहां भागने लग गए। ऐसे हमारा जो पुरुषार्थ है वो सिंह जैसा है। सिंह सोता है तो सैकड़ों मच्छर उस पर बैठ जाते हैं, लेकिन नींद में भी करवट बदलता है ना तो उड़ के भाग जाता है। जगे तो रह रहे कहां से, लेकिन नींद में भी करवट बदलेगा ना तो उड़ने लग जाएंगे। ऐसे कर्म तो बेचारे कुछ नहीं है, लेकिन हम लोगों को दिमाग में उल्टा अभिप्राय भर गया है कि कर्म परेशान करता है। लेकिन हमारी ताकत कितनी कि थोड़ा जागृत हो जाए वो भागने लग जाएंगे। सहजे आत्मबोध हो जाए ऐसा जानकर जो भक्ति का निरूपण किया है, भक्ति का निरूपण क्यों किया है? आत्मबोध हो जाए इसलिए किया है। और वो भक्ति आने से स्वरूप सत्पुरुष के पुरुषार्थ की चेष्टा में वृत्ति रह जाए। ऐसी भक्ति को और सत्पुरुष को बार बार त्रिकाल नमस्कार हो। जो कदी प्रगटपणे वर्तमान में केवल ज्ञान की उत्पत्ति थई नहीं, यद्यपि अभी तक वर्तमान में केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हुई है, परंतु जिसके वचन के विचार योग से शक्ति रूप से केवल ज्ञान है ऐसा स्पष्ट जाना है, श्रद्धा रूप से केवल ज्ञान हुआ है, विचार दशा से केवल ज्ञान हुआ है, इच्छा दशा से केवल ज्ञान हुआ है, मुख्य नायिका हेतु से केवल ज्ञान वर्तता है, यह केवल ज्ञान सर्व अव्यावाद सुख का प्रकट करने वाला, जिसके योग से सहज मात्र में जीव पामवा पाम प्राप्त होने के योग्य हो जाता है, ऐसे सत्पुरुष के उपकार को सर्वोत्कृष्ट भक्ति से नमस्कार हो, नमस्कार हो। क्या लिया? जो यद्यपि अब तक तो कोई वर्तमान में केवल ज्ञान की उत्पत्ति हमें नहीं हुई है, अब अपने सत्पुरुष को ज्ञान में लेते हैं कि अभी ये 27वां वर्ष चलता है, हमको केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हुई है, परंतु जिसके वचन के विचार योग से, सत्पुरुष के वचन के विचार योग से हमको केवल ज्ञान, कितनी जगह से केवल ज्ञान नजर आता है और किस ढंग से केवल ज्ञान हमको मालूम पड़ता है, केवल ज्ञान का एहसास लिया है इधर कि शक्ति रूप से केवल ज्ञान हमको है, ऐसा स्पष्ट जानने में आया है। कहाँ से जानने में आया? इस सत्पुरुष के वचन के विचार के योग से हमको जानने में आया कि हमारे में केवल ज्ञान है, सामर्थ्य रूप शक्ति रूप केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान की शक्ति हमारे में है, हम कोई निर्बल दीनहीन नहीं है, और ऐसा स्पष्ट जाना है, कोई अनुमान करके तर्क लगा के जाना ही नहीं, ऐसा स्पष्ट जाना है, हमको प्रतीत है, विश्वास है, इसलिए कहते हैं कि श्रद्धा रूप से भी केवल ज्ञान हुआ है। श्रद्धा रूप से श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा की ऐसा नहीं लिया, श्रद्धा रूप से तो केवल ज्ञान हुआ है, क्योंकि श्रद्धा तो वर्तमान की स्वीकृति करती है, स्वीकृत करते हैं, स्वीकार करना वो श्रद्धा का कार्य है, तो श्रद्धा रूप से हमको केवल ज्ञान हुआ है, विचार दशा से भी केवल ज्ञान हुआ है, केवल ज्ञान का स्पष्ट स्वरूप हमारे ज्ञान में, हमारा केवल ज्ञान का स्पष्ट स्वरूप भाषित हो जाता है, होता है।
आमा विचार में थोड़ा ज्ञान नो कणियो आवी गयो,
ज्ञान नो जाति आवगी ने, जे सम्यक मति श्रुत ज्ञान छे एनी जाति केवल ज्ञान नहीं छे, एम छे જાતિ તો એક છે, એને કઈ જમવા જુદો નો બેસાડાય, એક જાતિ નો એને કઈ જમવા જુદો નો
બેસાડાય,
એક જ પંક્તિમાં બેસાડાય, જીનેશ્વર કે લઘુનંદન શાંત દશા તિન કી પહેચાને કરે કર જોડી બનારસી બંધન, કિસકો કે જીનેશ્વર કા લઘુનંદન હે, સત્પુરુષ કો જીનેશ્વર કા લઘુનંદન બોલા હૈ, ઉસકી જાતિ આ ગઈ ઉસમે, વિચાર દશા સે કેવલ જ્ઞાન હુઆ હૈ, ઈચ્છા દશા સે ભી કેવલ જ્ઞાન હુઆ હૈ, बहुत अल्प काल में हम केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, ऐसी हमारी इच्छुक वृत्ति, केवल ज्ञान की इच्छुक वृत्ति, पूर्णता की इच्छुक वृत्ति है, वो बहुत तीव्र हो गई है। कहाँ से तीव्र हो गई? सत्पुरुष के वचन से, वचन के विचार से, विचार योग से ऐसा हो गया, इच्छा दशा से केवल ज्ञान हो गया, ये पूर्णता पूर्णता लिया है सब में, केवल ज्ञान शब्द मैंने एक ज्ञान के पर्याय नहीं, पूर्ण शक्ति रूप से पूर्णता देखी, श्रद्धा से प्रतीत हो गई, विचार दशा से वर्तता है केवल ज्ञान, इच्छा दशा से भी केवल ज्ञान हुआ है, मुख्य नहीं ना हेतु से केवल ज्ञान वर्तता है, मुख्य नहीं निश्चय नहीं, जो निश्चय नहीं है और व्यवहार नहीं है, दो नहीं है, इसमें व्यवहार नहीं गौण है और निश्चय नहीं मुख्य है। क्यों मुख्य है? कि निश्चय नहीं का विषय अपना आत्मस्वरूप, निश्चय आत्मस्वरूप है, निश्चय आत्मस्वरूप उसमें तो केवल ज्ञान आदि पूर्ण पर्याय भरी हुई है, अनंत अनंत भरी है। तो उस हेतु से तो हमको केवल ज्ञान, इसके हेतु से तो हमको केवल ज्ञान वर्तता है, मौजूद वर्तता दिखता है, मौजूदगी दिखती है हमको। तो शक्ति पण केवल ज्ञान छे हमको। अहिया तो विजुअलाइज करी लीधु के मौजूदगी छे, केवल ज्ञान वर्ते छे, हमारा मां केवल ज्ञान मौजूद वर्ते छे। भीतर में विजुअलाइज करते हैं उसको, विचार करते हैं, इधर विजुअलाइज करते हैं।
आठ ही भिन्न भिन्न स्वरूप श्रीमद सदगुरु जी बात करी कृपा, तो एनो तो अर्थ एवो जो थतो कि एमनी आत्म स्वरूप अंदर भिन्नता तलिनता मां दिवेला छे, એટલે આ બધા વાતોની એક જ ઠેકાણે કરી દીધી છે।
આત્મલિંગતા તો ઘણી
પહેલા છે, ભલે ઈચ્છારું વિચારું
એમાં કોઈ શક નથી કે એમને આત્મલિંગતા ઘણી હતી, એમાં કોઈ શક નથી। અને બધા ઉદ્ગારો તો આત્મામાંથી જ નીકળ્યા છે, એમાં કાંઈ સવાલ નથી। ઇસ વચન કા બેકગ્રાઉન્ડ, પૂરા બેકગ્રાઉન્ડ અપના આત્મ સ્વરૂપ હી હૈ। आत्मा में खड़े रह करके ही उनकी वाणी नहीं निकलती है, दिव्य ध्वनि छूटती है। दिव्य स्वरूप को दर्शाने के लिए दिव्य ध्वनि छूटती है, उसको दिव्य ध्वनि कहते हैं, यानी कि वाणी को दिव्य ध्वनि बोलते हैं।
त्रिकाली कारण शुद्ध परायमा પોતાનો ગતિગમન કરી રહ્યા છે, એને ઉત્પાદ થયેલી પર્યાય શુદ્ધ પર્યાય ને શુદ્ધ નિશ્ચિત ને જોઈને આ પ્રમાણે બોલીને વાત કરે અલિંતે ને આ મનુ
મુખ્ય નયિકા હેતુ સે કેવલ જ્ઞાન વર્તતા હૈ, યો કેવલ જ્ઞાન સર્વ સંપૂર્ણ अव्याबाध सुख का प्रकट करने वाला है, जिसके वचन के योग में, योग में जिसके योग में, जिसके प्रत्यक्ष योग में, वचन नहीं दिया है, जिसके योग में, जिसके प्रत्यक्ष योग में माने सहज मात्र में मात्र मां जीव प्राप्त करने के योग हुआ। वो अपना सत्पुरुष को, अपने गुरु को स्मरण करते हैं, तो वो मेरे सत्पुरुष के योग में मेरा आत्मा तो सहज मात्र में केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेगा। इतना बड़ा प्रभाव कि जिसके प्रत्यक्ष योग में मेरे आत्मा केवल ज्ञान को सहज मात्र में प्राप्त कर लेगा, रमत मात्र में प्राप्त कर लेगा, कितना बड़ा प्रभाव है। ऐसे सत्पुरुष के उपकार को सर्वोत्कृष्ट भक्ति से नमस्कार हो, नमस्कार
हो। अन्य आवाज़ प्रयोग में उतारो ने, आप वाक्य ने प्रयोग में उतारो,
उसके लिए तो सत्पुरुष की पहचान में आना पड़ेगा। जब ये उपकार कैसा होता है अपने आत्मा पर जब मालूम पड़ता है, इसके पहले वो मालूम पड़ता नहीं है। तो प्रयोग में तो अपने को शामिल होना पड़ेगा। जब ये उपकार वृत्ति कैसी होती है वो मालूम पड़ता है। सुभानी जी लिखते हैं कि मेरे गुरु इतने महान हैं, इतने महान हैं कि मेरी गुरु की महानता के आगे ये लोका लोक भी एक अणु रेणुवत है, राय के दाने के बराबर हो है। सारे जगत को कहाँ रख दिया, एक परमाणु जैसा कर दिया, सिर्फ चौदह ब्रह्मांड को नहीं, लोक और अलोक दोनों को ऐसे मेरे गुरु मान रहे।
गुरु का महिमा प्रथम आना चाहिए,
ऐसा महिमा पहचाने तो आए बिना नहीं पहचाने तो कोई लाया जाता है ऐसा बनता नहीं, कोई जबरन लाने की वो चीज नहीं है, जबरदस्ती से तो कोई ऐसा किया कराया नहीं जाता है, न किया जाता है।
सता वशीकरण थे जाए, कोको वशीकरण जब थे जाए, निमित्त नहीं, निमित्त नहीं थी।
ऐसा वचन लिया भी, ये पत्र यहाँ 493 है जो पूरा होता है इधर। कोई दूसरा विचार किया है या क्या करें आगे? 494 वाला जो है वो सौभाग्य भाई के ऊपर का पत्र है, लेना हो तो कोई आगे पछे
अच्छा अच्छा आपके तो संधान से क्या अच्छा पढ़ो पढ़ो कोई आगे क्या संधान से पूछो जी
પછી જે આત્મા કરતા છે ને એમાં અસદભૂત ઉપસરિત નહીંથી ઘટપટ આદિમાં પણ કરતા છે એમ કીધા છે, અસદભૂત અનુપચરિત નહીંથી કર્મનો કરતા છે અને અસદભૂત ઉપસરિત નહીંથી ઘટપટ આદિનો કરતા છે, એ ઘટપટ જે લીધા એ અજીબ દ્રવ્યને સ્થાપી લીધી એમ કરતા છે,
એમાં મકાન બી આવી ગયા હે, એમાં મકાન બી આવી ગયા,
ઘટપટમાં મકાન આવી ગયા, એ બધું આવી ગયું। પછી એમ ભોક્તાપણામાં પણ એમાં સ્થાપન છે, ભોક્તાપણામાં પણ સ્થાપન એ રીતે છે કે પોતે પોતાના ભાવનો ભોગતા છે, આમાં દ્રવકર્મનો ભોગતા છે, બારમાં વેદનાદિ સંયોગનો ભોગતા છે, એમાં પણ ફૂટબળ આવી જાય છે। પછી મોક્ષની અંદર પણ દ્રવ્ય મોક્ષમાં ફૂટબળ આવી જાય છે, ભાવ મોક્ષની અંદર તો વિભાવથી વિકારથી છૂટે છે, પણ દ્રવ્ય મોક્ષમાં બધા પ્રકારના બંધનથી છૂટે છે, દ્રવ્યના બંધનથી, આયુષના બંધનથી, શરીરના બંધનથી,
કુટુંબના બંધનથી। કરશો
હાજી
બે મિનિટ
હાજી ફરમાવો
મારા શ્રી બધા
કોણ આવ્યું છે
ભુવન નામ ભાઈ નામ રામ શ્રી નાથી
છે ને ભુવન મનુષ્ય છે
અભ્યાસી છે જે છે તે છે
નામ મોટું છે મૃત્યુ પૂજક શ્વેતાંબર છસો ઓગણસી નથી લેવાનું ओम श्री सद्गुरु चरणाय नमः। आत्मनिष्ठ श्री सौभाग्य प्रत्यय श्री सायला सौभाग्य भाई प्रत्यय पत्र छे, स्पष्ट छापू छे संबोधन, क्यारेक संबोधन नहीं छापता। आत्मनिष्ठ श्री सौभाग्य प्रत्यय 29मो वर्ष छे, आत्मनिष्ठ कया छे, लक्ष्य एक छे ने, बीजू लक्ष्य नहीं, આત્મપ્રાપ્તિ સિવાય જેને બીજું લક્ષ્ય નથી એને આત્મનિષ્ઠ કહે છે, અને એક સ્વરૂપમાં સ્થિર હોય એને આત્મનિષ્ઠ કહે છે, મોક્ષને પણ કહે છે અને જ્ઞાનીને પણ કહે છે। ફાગણવદ છઠ કે પત્ર મેં લિખે હુએ પ્રશ્ન કા સમાધાન, ઇસ પત્ર મેં સંક્ષેપ સે લિખા હૈ વિચાર કરના હૈ, ઉસકા વિચાર વિચારના હૈ। जो ज्ञान में देहादि अध्यास मिट गया है और अन्य पदार्थ में अहंता ममता नहीं वर्तता नहीं है तथा उपयोग स्वभाव में परिणमन करता है, अर्थात ज्ञान स्वरूपपना भजता है, यह ज्ञान को निरावरण ज्ञान कहने योग्य है। निरावरण ज्ञान की परिभाषा लिखी है प्रथम पैराग्राफ में कि जिस ज्ञान में देहादि अध्यास मिट गया है, मैं देह स्वरूप नहीं, मैं राग स्वरूप नहीं, अध्यास में ऐसा अनुभव होता है, कि मैं रागादी स्वरूप हूँ, जिस जिस प्रकार का राग होता है जैसा जैसा ऐसा मैं ऐसा अनुभव आता है, और मैं देहादी स्वरूप हूँ, मैं फलाना फलाना हूँ ऐसा भी अनुभव में आता है। इस प्रकार का अनुभव जिसका मिट गया है, मैं एक प्रत्यक्ष चैतन्य सत्ताधारी आत्मा हूँ, इस जगत का निरालंब तत्व हूँ, निरपेक्ष पदार्थ हूँ, वो मैं कोई बाहर में जो व्यवहार करते हैं ऐसा मैं नहीं हूँ। ऐसा अध्यास जिसको मिट गया है, मैंने अनुभव सारा पलट गया है, और जो पूर्व कर्म से संयोग में जो पदार्थ है उसमें अपनापन नहीं लगता है, मेरापना नहीं लगता है, अहंता ममता मैंने मेरापना अपनत्व नहीं दिखता है, नहीं वर्तता है, और अपना उपयोग बार बार स्वभाव में परिणमन करने लगता है, उपयोग स्वभाव में जाता है, उधर नहीं जाता है, क्योंकि सुख नहीं है, उधर दुख है, जाने से दुख है, उपयोग स्वभाव में परिणमन करता है, अर्थात ज्ञान स्वरूपाकार परिणमन कर रहा है, ज्ञान अन्य पदार्थ के आकार परिणमन नहीं कर रहा है, मेरा ज्ञान स्वरूपाकार परिणमन कर रहा है, मेरा ज्ञान तत्व ही मुझे गम्य हो रहा है, अनुभव में आ रहा है, ऐसे ज्ञान को निरावरण ज्ञान कहने योग्य है, यही ज्ञान निरावरण ज्ञान है। वो नानावरणी को इधर लिया ही नहीं, यहाँ तो स्वानुभूति आवरण हट गया तो निरावरण हो गया, अपने को अपने आप का अनुभव होने में जो बाधा थी, आवरण थे, वो मिट गया तो ज्ञान निरावरण हो गया। फिर उक्ष वाली बात का तो कोई वैल्यू नहीं है, ज्यादा बुद्धि है कम बुद्धि है उसका कोई कीमत नहीं है। अब यहां से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5 पैराग्राफ में कृपालु देव ने ज्ञानी और अज्ञानी की वाणी की का तफावत जो है उसकी चर्चा की है। पूरे ग्रंथ में यह विषय इधर एक ही पत्र में चला है कि ज्ञानी की वाणी और अज्ञानी की वाणी में तफावत क्या है, अंतर क्या है, जिससे ज्ञानी अलग पड़ता है यानी पहचाना जाता है। कभी ऐसा होता है कि ज्ञानी इतने अच्छे प्रवक्ता नहीं होते हैं, ऑरेटरी उनको नहीं भी होती है, ऐसा कोई वचन योग नहीं होता है, और अज्ञानी को बहुत अच्छे वक्तृत्व कला बहुत अच्छी हो सकती है, फाइन ऑरेटरी, क्लास वन ऑरेटर जिसको बोले, ये रजनीश वगैरह हो गया ना, अभी अभी तो काफी देखने में आते हैं, तो ऑरेटरी बहुत फाइन होती है उन लोगों में, फिर भी वो अज्ञानी है या ज्ञानी है वो कैसे पहचान सके, उस विषय में बहुत सुंदर चर्चा इधर चली है। सर्वजीव को, सर्वजीव माने सामान्य मनुष्य को, ज्ञानी अज्ञानी की वाणी का अंतर समझना कठिन है, सब नहीं समझ सकेंगे, सामान्य जन भी नहीं समझ सकेंगे कि ये ज्ञानी है या अज्ञानी है। बात तो शास्त्र की करते हैं, आत्मा की करते हैं, धर्म की करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन वो ज्ञानी है या अज्ञानी है ऐसी समझ सभी को नहीं आती, सामान्य जन को भी नहीं आती। यह बात इसलिए यथार्थ है यानी ठीक है, यह बात इसलिए सही है क्योंकि शुष्क ज्ञानी भी कुछ सीख करके ज्ञानी के जैसा उपदेश करता है, यही कारण है। ज्ञानी भी ज्ञानी के का कोई बात सीख करके जैसा ज्ञानी उपदेश करता है ऐसा ही उपदेश ग्रंथ पढ़ करके या ज्ञानी को सुन करके ऐसा ही उपदेश करने लग जाता है। इसलिए उसमें वचन का समतुल्यपना देखने से शुष्क ज्ञानी को भी सामान्य मनुष्य ज्ञानी मान लेते हैं। क्या होता है वचन के कुछ 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 वचन बराबर आता है, जैसा वो कहते हैं वैसा ही वो कहते हैं, उनको लगता है ज्ञानी भी ऐसा कहते थे वो भी ऐसा कहते हैं, ऐसे को सीख करके वचन के समतुल्यपना देखने से शुष्क ज्ञानी को भी सामान्य मनुष्य ज्ञानी माने। सामान्य मनुष्य क्या, मंद दशावान मुमुक्षु जीव भी उसमें ऐसे वचन से भ्रांति को प्राप्त होता है, मंद दशावान मुमुक्षु होता है उसको भी अज्ञानी में ज्ञानी की भ्रांति हो जाती है, जिसकी मुमुक्षुता सामान्य जगन्य है। परंतु उत्कृष्ट दशावान मुमुक्षु पुरुष शुष्क ज्ञानी की वाणी, ज्ञानी की वाणी जैसी शब्द से देख करके प्रायः भ्रांति प्राप्त होने योग्य नहीं है। जो उत्कृष्ट दशावान मुमुक्षु है उनको शब्द से ऐसी ही वाणी सुनने में आवे तो भी उसको भ्रांति होने वाली
नहीं
है। क्यों भ्रांति नहीं होगी, कि उसका ध्यान कोई वाणी और शब्द पर नहीं है। वाणी कैसे आती है, वाणी में कैसे कैसे भाव हैं, क्या क्या भाव है, उसका आशय क्या है, बैकग्राउंड क्या है, वो उनको समझ में पकड़ने में आता है। क्योंकि ज्ञानी की शुष्क ज्ञानी की वाणी में आशय से ज्ञानी की वाणी की तुलना होती नहीं है। देखो दो शब्द आया है, एक आशय और एक तुलना, जो तराजू है तोलता है, उसमें बैलेंसिंग पावर है तराजू में। तो ऐसे जो आशय है, आशय कौन सा होता है, कि सिर्फ आत्मकल्याण करना, ज्ञानी की वाणी की तुलना करने में आए तो हर पहलू से वो आत्मज्ञान होने में वो केंद्रित करती है, वो वाणी सुनने वाले को आत्मकल्याण करने में केंद्रित कर देती है वाणी। बहुभाग तो हमने देखा है, जो प्रवक्ता होते हैं वो दृष्टांत को बहुत जगाते हैं, बनाते हैं, बात में कुछ दम नहीं होता है। दृष्टांत तो सब समझते हैं, लौकिक सबको अनुभव गोचर दृष्टांत है, लेकिन उसमें बहुत मरी मसाला डाल करके बहुत चगाते हैं, बहुत मिलाते हैं, जैसे वो आप तो कहते हैं हिंदी में छोंकते हैं, हमारे वघार करते हैं, हम हमारे मसाला डाल करके वघार करते हैं ना, तो ऐसे बात तो मामूली होती है दृष्टांत की बात तो, लेकिन उसको बहुत चगा। और सिद्धांत में फिर इतना इतनी बात नहीं आ रहे। अब लोगों को क्या है कि ऐसी हल्की हल्की बात में मनोरंजन होता है, तो बहुत अच्छा लगता है, लगता है कि नहीं बहुत अच्छा सुनाता है, बहुत अच्छा सुनाता है। लेकिन ये जो आत्मवार्ता है वो आत्मकल्याण का निमित्त है और आत्मकल्याण का आशय वाली चीज है। आशय मैंने आत्मकल्याण का हेतु सिद्ध होना, प्राप्त होना, उसी को आशय कहते हैं। उसको छोड़ करके हमको कर्णेन्द्रिय में या मनेन्द्रिय में मनोरंजन हो गए, कर्णेन्द्रिय में प्रिय लगे, ऐसी आवाज, ऐसी छटा, तो ये वाणी इंद्रिय विषय हो गया है। जैसे पंचेंद्रिय का विषय है, होता है बाहर में अशुभ, ऐसा ये शुभ, शुभ को भी अशुभ हो गया, वहां तो फिर शुभ नहीं रहा, तो अशुभ हो गया फिर। ऐसा जो बनता है वो शुष्क ज्ञानी की वाणी में आशय नहीं आता और ऐसा संतुलन भी नहीं रहता, दो बात की कमी होती है हमेशा। एक तो जो आत्म प्राप्ति की जो विधि है, जिसको आशय हम कहें कि जहाँ आत्म प्राप्ति होती है, हमारा कल्याण होता है, यही जो आशय है वो आशय छूट जाता है शुष्क ज्ञानी की वाणी में, और उसकी वाणी में संतुलन बना नहीं रहता, असंतुलित वाणी होती है, बैलेंस आउट होता है, कहीं कहीं आउट ऑफ बैलेंस जाता है, कहते कहते ये जिसकी नज़र है उसको पता चल जाता है। ऐसे जिसकी नज़र नहीं है, वो सामान्य हो, सामान्य मुमुक्षु हो, उनको बात का नज़र नहीं होता है तो उनको पता नहीं चलता है, उनको लगता है कि वो भी कोई ज्ञानी है, इतनी अच्छी बात करते हैं तो वो भी कोई ज्ञानी होंगे, ऐसा उनको भ्रम होता है, अज्ञानी में ज्ञानी का भ्रम होता है, ऐसा बन जाता है। तो ये पहले पैराग्राफ में उन्होंने इतनी बात खोली है, और चार पैराग्राफ है इस विषय पर, वह बड़ी सुंदर बात है, ज्ञानी के वाणी में कौन सी विशिष्टताएं होती है, वो बात बहुत सुंदर लिखी है, किस किस प्रकार की विशिष्टताएं होती है, ये बात का निरूपण इधर बहुत अच्छा आया है, समझ हुआ है। कल लेंगे आगे का विषय।
परम कृपालु श्री सद्गुरु देव नमो।